संतप्त मानस शांत हो इनके गुणों के मान पर भमान महान समय सार परमागम में मोक्षाधिकार की चूलिका के अंतिम गाथाएं चल रही हैं। अपन ने कल 17 और 18वीं गाथा पढ़ी थी, अब उसकी टीका के बाद का कलश पर बात करनी है। अभी अपन जब पाठ कर रहे थे तो उसमें एक पंक्ति आई थी, जब तक न छोड़े क्या, जब तक है आत्मा प्रकृति के निमित्त से परिणमित होना नहीं छोड़ेगा। यानी ऐसा नहीं कहा कि कर्म का उदय जब नहीं होगा, कि कर्म जब इसको विकार नहीं कराएगा तब नहीं, कि आत्मा के माथे है सब। तो ये प्रकृति के मैंने ज्ञानावरण आदि कर्म प्रकृतियों के उदय में परिणमित होता है, उसको निमित्त बनाकर ये स्वयं परिणमित होता है। इस बात पे वजन ज्यादा है, और जब ये ऐसा परिणमित होना बंद कर देगा इसका काम हो जाएगा। यदि हमको ऐसा लगता है कि ये तो सब अपराध हमारे माथे ही पे मर दिया, तुमको अपराध नहीं मरा है पर पूरी स्वतंत्रता दी है, आजादी दी है। यदि कर्म के उदय से होता तो कर्म को उपदेश दो, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। कोई तो कहा कर्म सुला दो, कर्म जगा में बस खत्म। ऐसा जरूर लगता है कि हमारे माथे पर एक हुआ है, लेकिन वास्तव में जब हम किसी को ऐसा कहते हैं कि तुम्हारी गलती से हुआ है ये काम, ऐसा नहीं तो नहीं बिगड़ता ये काम, तो ऐसा लगता है हम आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उसमें इनडायरेक्ट में ये छिपा है कि तुम्हें तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हें ही हो इसके करता धरता, क्योंकि वो गलती हुई है जो खराब बिगड़ा है काम, और नहीं बिगड़ता तो भी उसके ही मन से जाता ना। तो हमें अपने कल्याण का काम आचार्य देव ने हमें खुद ही सौंप दिया कि तुम कर्म के उदय प्रकृतियों के उदय के अनुसार परिणमित होना बंद करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। हम क्या करेंगे कर्म के उदय में, इतना सा ही तो मोक्ष का रास्ता खुला है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि जब अपने घर में दो बच्चे आपस में लड़ते हैं, एक है 5 बरस का और एक है 7.5 बरस का, सगे भाई दोनों, तो जब घर की माँ बाप भाई बहन कोई उन्हें समझाते हैं तो किसको समझाते हैं, आप बताओ? बड़े भाई को ही समझाते हैं ना कि भाई ये तेरा छोटा भाई है, तू क्यों ऐसा करता है, अरे कोई गलती भी करता है तो तू उपेक्षा कर, मैंने लड़ाई नहीं करना और करना तेरे ही हाथ में है, तो उसको ही समझाते हैं ना। तो अभी ऐसी लड़ाई इधर है कि एक तो कर्म का उदय हो तो जीव विकार करे ही करे, और जब जीव विकार करे तो कर्म बने ही बने, ऐसा दुतरफा जो नियम बताया जाता है तो फिर तो अनादि काल से ऐसे ही चला आ रहा है और अनंत काल तक भी ऐसा ही चलेगा, अभव्यों का तो ऐसा ही होगा, लेकिन मोक्ष का मार्ग कहां से खुलेगा। तो एक ही उपाय है कि कर्म जब जीव राग करे और कर्म बंधना बंद कर दे, राग माने मिथ्यात्व भी शामिल है उसमें, मिथ्या दर्शन अज्ञान असंध, और कर्म नहीं बंधे। एक रास्ता तो यह है हमारे छूटने का, तो एक रास्ता यह है कि जब जीव कर्म का उदय आए तो जीव विकार नहीं करे, अब कर्म तो जड़ है और अज्ञानी है, अब उसे तो ये बात समझाई नहीं जा सकती है कि तू ही गम खा जा। उन बच्चों की लड़ाई होती है ना, तो यहां से शुरू होती है कि एक दूसरे को चांदा मारता है, वो उसे मारता है, वो उसे मारता है, धीरे धीरे कसाई तो मंद होती है, तो वो चांदा मारने का तेजी थोड़ी कम होती जाती है। अंत में यहां तक पहुंच जाते हैं कि वो ऐसा छूता है बस उसे, उससे कहें तो बंद कर दे कि नहीं पहले ये बंद करेगा, क्यों वो समझता है कि जिसने पहले बंद किया वो हारा, और जो बाद में बंद किया गया वो जीतेगा, उसके दिमाग में ये बसा दिया है। माने कसाई में दम नहीं रहती है लड़ाई में, लेकिन फिर भी वो लड़ाई बंद नहीं होती, कौन करे पहले बंद, ऐसे जब कौन करे, कर्म करे कि जीत करे। तो कहते भैया कर्म का क्या बिगड़ रहा, अब वो समझदार भी नहीं है, उसे बने तो जैसा और नहीं बने तो जैसा है, उसे कोई सुख दुख तो होता नहीं, अब सुख दुख होने का संबंध तो तेरा है, तो तेरे को ही ये करना पड़ेगा कि कर्म का उदय आए और तू राग द्वेष नहीं करे। बस यहां यदि तूने कर लिया ये काम, ये देखा ना प्रकृति निमित्त पर नमन, ऐसा आ रहा है कथा थी ना, बोले बोलो कथा हूं, जब तक न छोड़े आत्मा प्रकृति निमित्त प्रणमन है ना, कि जब तक है आत्मा प्रकृति के निमित्त से प्रणमित होना बंद नहीं करे। बोलो कर्म का उदय रहेगा जब तक अज्ञानी रहेगा, जब तक प्रकृति के निमित्त से प्रणमित होना बंद नहीं करेगा, लड़ाई बंद करना तेरे हाथ में है। तो रम जी ने इसकी और थोड़ा बाल्की खाल निकाली कि जब तीव्र उदय होता है तब तो उसके उदय के अनुसार प्रणमन होता ही होता है, उसमें तो तुम कुछ नहीं कर सकता है, और उन्होंने नदी में तीव्र प्रवाह से जब बह रहा है तब का उन्होंने उदाहरण दिया, तब तो तुम हाथ पैर मारेगा तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उसका एक नियम है कि वो प्रवाह कहीं तीव्र होता है कहीं मंद होता है, तो जब वो प्रवाह मंद हो और तू जब बहता जाता हो और किनारे पर कोई पेड़ दिखाई दे जाए तो उस वक्त तू हाथ पैर मारे तो निकल सकता है भंवर में से, और यदि नहीं करे तो थोड़े काल मंद पर बहेगा, थोड़े काल तीव्र बहेगा, आखिर बहते बहते उस गड्ढे में गिर जाएगा, फिर तू बच नहीं सकता, संसार समुद्र में पहुंच जाएगा। तो अभी ऐसे ही कैसा वो जब होए मंदोदय तब की बात है ना, रमेश जी तो उसको भी मत घबराओ, हर अंतर मुहूर्त में ही होता है, ये नियम है, मंद से तीव्र, तीव्र से मंद से तीव्र से मंद, मन हर अंतर मुहूर्त में तुझे ये चांस है ज्ञान देंगी। अब तूने कितने चांस खोए हैं, अब तू इसकी कल्पना कर ले, कितने अंतर मुहूर्त हो गए तुझे संसार में रहते रहते, कितने चांस तेरे को मिले। और टोडरमल जी कहते हैं कि जब दो मंद मंद बहा तो हमने आराम से शांति से बैठा, हमें तो कोई झगड़ा नहीं, शांति से बैठे रहते। अशोक नगर में जब था एक मित्र थे हमारे, वो वकील थे और उनके बाल बच्चे कुछ थे नहीं, प्रॉपर्टी बहुत थी, किराया मिराया बहुत आता था, तो वो कहते थे कि मैं तो सब बंद कर दिया, काम वाम बकरा बकरा सब बंद कर दी, अब मैं कोई अदालत नहीं जाता हूं, कुछ नहीं करता हूं, तो सब शांति से अपने घर में पड़ा रहता क्यों, और बस दो चार दोस्त आ जाते हैं तो फिर ही मैं ताश खेलने वाले, तो ताश खेल लेता हूं, तो ऐसे तो ऐसा करता रहता हूं। तो मैं उन्हें समझाता था, ऐसा क्या बात कर रहा हूं, एक काल तो प्रमाद में चला जाएगा, फिर तुम्हें जो इतनी अनुकूलता मिली है तो तुम्हारे पुण्य के वजह से कौन कौन सी अनुकूलता मिली, कि तुम्हारे पास इतने मकान है, इतना किराया आता है, इतने कमाने की जरूरत नहीं है, है? अरे इससे भी बड़ी अनुकूलता क्या मिली कि तुम्हारे बाल बच्चे नहीं है, अनुकूलता है क्या प्रतिकूलता बोलो, वो चाहे जितने मकान होते यदि एक भी बच्चा होता छोकरा लड़का तो वे मरते दम तक बकालत नहीं छोड़ते, क्यों? तो अब जब समझ लो कि इतना अवकाश मिला तो वो हमें आत्मा के कल्याण करने के लिए, तो वो पुण्य का अवसर है कि पाप का? तो संतान नहीं होना ये पुण्य के उदय का कार्य है कि पाप के उदय का कार्य? दूसरों को तो नहीं है ये चांस, अब बस उन्हें सारी जिंदगी ऐसे ही बिताई, कुछ उनके पास असर नहीं हुआ कुछ भी समझाने का, कहने है ना। तो ऐसा ये है कि साहब एक की बात कह रहे थे, इतने बेवकूफ थे, इतने ना समझते, अरे ये संसार में जो रख रहे वे सभी उतना ही ना समझ रहे ना, सबको ही ऐसे बहुत अवसर मिले हैं, पर हमने भी आज तक वही तो किया कि अपना एक समय इसमें खराब किया, बेकार की बातों में लेना नहीं देना नहीं, इनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है, क्यों? आज मरे हो कल तीसरा दिन होने वाला है, अब जगत में जो हो रहा है होगा, होता रहेगा, तुझे क्या लेना देना है उससे, बोलिए चाहे तो निकाल सकते हैं ना पूरा समय। आज तो हमने तो कह दिया कि तो प्रकृति के निमित्त से परिणमित होना, जब तक तू बंद नहीं करेगा तब तक रखड़ता रहेगा, और जब बंद कर देगा तो तेरा कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, क्योंकि करना अब तेरे हाथ में है, बस करने की तो भाषा है, तो होने की बात है कि जिसका संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया होगा उसको ऐसी बुद्धि होगी, है ना। मोक्ष मार्ग वाला जिनको भली होनहार है, ज्ञानचंद जी पहले बहुत व्याख्यान करते थे उस पर, जिनकी भली होनहार है, जिनकी भली होनहार है, उनको ऐसी बुद्धि उपजती है, क्यों? तो जिनकी भली लाखों में लोगों में से एक आदमी चिटक के आ जाता है, अभी देखो सारे देश में लाखों जैनी हैं, उनके बच्चे भी हैं, और सब अच्छी अच्छी पढ़ाइयां हैं, और अच्छी पढ़ाई करके फिर बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर क्या क्या बन जाते हैं, उनकी कहानी में अभी नहीं सुना मैं जाता, लेकिन ऐसे में से ही जो इक्के दुक्के छटक के यहां आ जाते हैं ना, जिनके पुण्य के उदय से थोड़े कम नंबर आए, बिल्कुल ज्यादा कम आते तो हम भर्ती ही नहीं करते, और ज्यादा आ जाते तो फिर किसी भर्ती में चले जाते देखने के लिए, क्यों? इसलिए कह रहा हूं कि हमने देवलाली में कितने भर्ती लड़के भर्ती कर लिए थे, 35, 40, 35 में भर्ती कर लिए थे, 45, तो उसमें से 20 आए, ये सब भर्ती हो गए, सब पूरी प्रक्रिया पूरी कर गए, साथ अपन ने कुछ ऐसा रखा था ना 100-200 रुपया ये जमा कराओ तो हम तुमको भर्ती मानेंगे, क्या तुमने बंद कर दिया वो, अब मेरे आ रहा है कि ऐसा रखो 1000 रुपया जमा कराओ बन गया तब उसको हम मंजूरी दें, क्योंकि तो नकली तो नहीं है भर्ती होंगे, ये तो भाग्य से 15 और बाद में आ गए, वे चले गए दूसरे आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये बात सही तो नहीं है ना। हमने उस वक्त किसी अच्छे विद्यार्थी को तुम उससे ज्यादा नंबर वाले थे तुम्हें भर्ती कर लिया, वो बेचारा चला गया, अब तुम नहीं आए, नहीं तो वो भर्ती हो जाता ना। अगली बार शांति जी 5000 रुपये रखना, क्या कि हम तुमको दे रहे हैं ये कि तुमको हमने भर्ती किया है, इस तारीख को उपस्थित हो जाए, लेकिन ये पक्का तब माना जाएगा कि तुम 5,000 रूपये जमा करा दोगे, तब जाकर के हम पक्का मानेंगे कि तुम्हारा आना पक्का होगा, नहीं तो हम दूसरे को ये सीट दे देंगे। ठीक है ना, तुम तो भर्ती हो ही गए, तुम तो हाँ करो सही है ना। ऐसे मेरे कहने का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि ये पूरा प्रकरण यहीं तो समाप्त हो रहा है। जो मैं टीका पढ़वाना चाहता हूं, मैंने तो बहुत अच्छी तरह से उसे पढ़ ली है और मैं आपको सब उसका नहीं पढ़े भी बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक दफे मूल उनकी जो अमृतचंद की भाषा है आत्मसाती, वो तो पढ़ के सुन भी लें। पढ़ो शांति जी, हाँ सुनो, ध्यान से सुनना भाई, उसी का अर्थ करूंगा मैं अभी जोर से जरा। हाँ अब इसमें कुछ मर्म के बिंदु हैं कि सांप का उदाहरण दिया, तो कहते एक सांप जो उसमें विषभाव है, विष की थैली है, तो वो अपने आप तो कभी विष को छोड़ता नहीं है, लेकिन उस वक्त जमाने में ऐसा होता होगा कि किसी को वो सांप काट खाए तो उसे मिश्री मिलाकर, वो गुड़ का इन्होंने मिश्री लिख दिया, गुड़ मिला करके और दूध पिलाया जाता होगा और उससे फिर उसका वो सर्प का विष उतर जाता होगा। होगा कोई ऐसी विधि, क्योंकि इसमें लिखा है टीका में कि विष भाव को दूर करने में समर्थ ऐसा गुड़ से मिश्रित दूध पिलाने पर, माने वो तो कहते समर्थ है। अभी जैसे कोई मंत्र होता किसी को झाड़ते तो ठीक हो जाता है, किसी को नहीं होता ठीक। जैसे मैं तारी को कुछ नहीं दिखा तो हमने कह दिया तुम्हारे पुण्य का उदय कुछ तो है ना सोना बनाने में इस समय सार में सोना बनाने की विधि लिखी है। अब वो सोना बनाने की विधि से उस जैसे न तारी के जमाने में किसी ने सोना बनाया होगा और नहीं बनाया बना होगा तो उसमें सार पर आरोप लगाने लग गया होगा। तो उन्होंने लिखा सब चीजें और विधि तो सब सेम वैसी की वैसी लिखी जैसी अम्बेडकर ने लिखी थी और इतना और जोड़ दिया कि उसमें पुण्य का उदय और जो तीन चार पांच चीजें मिलाते थे ना उसमें लिख दिया पुण्य का उदय और मिला तो तब तो सोना बनेगा। अब किसी को नहीं बनेगा तो पुण्य पुण्य का उदय नहीं होगा तेरा, हम क्या करेंगे। यहां भी देखो ऐसा लिख रहे हैं कि गुड़ के साथ दूध पिलाने में वो विष भाव को छोड़ देता है कोई दूसरा व्यक्ति, लेकिन वो सांप को गुड़ मिश्रित दूध पिलाओ तो भी वो विष भाव को नहीं छोड़ता है। ये बात कहकर के उदाहरण में ये तो उदाहरण हुआ, सिद्धांत में क्या कहना चाहते हैं अभी कि जो अभिज्ञ जीव है वो स्वयं तो अज्ञान भाव को छोड़ता नहीं है, ऐसा कहकर ज्ञानी स्वयं छोड़ता है ये बताया है। भव्य जीव स्वयं छोड़ते हैं माने कोई कर्म नहीं छोड़ाता, वो स्वयं तो छोड़ता ही नहीं है, लेकिन उसे वो द्रव्य श्रुत के जिसके अध्ययन से निमित्त रूप से अथवा नियम रूप से वो अज्ञान का जहर उतर जाता है। कहते वो श्रुत का अध्ययन करने पर भी नहीं उतरता उसे। कोई ऐसा कहे वो आचार्य क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि तुम द्रव्य सिंगलाई को निरर्थक मत बताना, द्रव्य शास्त्रों को द्रव्य क्या जिनवाणी को क्या बता था है ना, उनको तुम निरर्थक मत बता देना उनके अध्ययन को, इसके लिए उन्हें यह सावधानी बरती है। जैसे गुड़ और दूध को पीता हुआ सांप स्वयं तो निर्विष होता ही नहीं है, लेकिन वो कहते स्वयं तो होता ही नहीं, गुड़ दूध पीता हुआ भी निर्विष नहीं होता, ऐसी जिनवाणी का स्वाध्याय करते करते भी जो कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव घर में से छूटना चाहिए नहीं छूटता, ये सब पढ़ते रहते हैं बस कदम, और वैसे की वैसे चलते रहते हैं। हमने पढ़ते थे मौलाना में तो कई वैष्णव विद्वान ऐसे थे कि वो जैन दर्शन के न्याय के ग्रंथ थे जो जैन विद्वान पढ़ा सकते थे उसे 100 गुने अच्छे पढ़ाते थे। उसमें मौलाना में एक जगन्नाथ शास्त्री थे, हम लोग सब पढ़ने के लिए उनके पास जाते थे उनके घर, और वो हमको पढ़ाते थे फ्री में, कोई ट्यूशन व्यूशन नहीं, उसको ट्यूशन व्यूशन तो वहां पाप समझते थे कोई भी लेना, और हम लोगों के पास तो पैसा भी नहीं था कि उन्हें दे करके पढ़ते, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उन्होंने एक अमर मार्तंड अर्थशास्त्री, और जब उनसे बात होती थी तो वो ऐसा कहते थे कि सच्चा तो एक जैन धर्म ही है, उनने जिस गहराई से अध्ययन किया था तो वो ऐसा कहते थे हमको, मतलब वो नहीं कहते तो भी कोई सब्जेक्ट का मास्टर तो कोई भी हो सकता है ना, मैं यूनिवर्सिटी में बौद्ध दर्शन पढ़ाऊं तो मैं बौद्ध थोड़ी हो जाऊंगा, लेकिन उनको अंदर अध्ययन करने से ये बात जम गई थी कि जैन दर्शन ही सच्चा है। तो हम कहते थे कि आप क्यों नहीं मान लेते हो, जैन दर्शन को स्वीकार कर लो, कि स्वीकार तो कर ही रहे ना तुम्हारे सामने, मैं पढ़ा रहा हमें स्वीकृत नहीं है। तो फिर हम कहते हैं कि रोजाना ये पिंडी पे जल छोड़ना कहते नहीं छूटता, तो हमारा करते थे और फिर जाकर के अरे भाई ये तो हमारी परंपरा चली आई है, आखिर हमारी बाप दादों से चली आई है, ऐसा है परंपरा थोड़ी बिगाड़ना है, ऐसा क्या क्या कहते। अब ये गाथा पर मुझे वो याद आ रहा है कि वो जिनवाणी में इतनी श्रद्धा व्यक्त करते थे, और कभी भाषण जिन्होंने बुला लो सभा में तो इतना ऐसा बोलते थे कि जैन ही नहीं बोल सके, और फिर उसकी श्रद्धा भी व्यक्त करते थे। अभी भी सेमिनारों में हमारे जैन विद्वान आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं अपने मुंह से, वे बिल्कुल डंगे की जोड़ कहते हैं तुमसे असली जैन तो मैं हूं, मैं जैन तत्व ज्ञान की गहराई जानता हूं और मेरा आचरण भी जैनियों से पवित्र है। क्यों कहते कि नहीं कहते तुम्हें नाम तो याद आ गए होंगे, क्यों ले रहा है किसी का नाम है ना, हम रात्रि में भोजन भी नहीं करते, हम दे भी नहीं करते, आचरण भी है हम तुमसे अच्छे जैनी है, और फिर अब समझ गए ना तो ऐसी स्थिति है। ऐसे अपने जैनियों में भी बहुत हैं, अब मैं जैनियों की बात करता हूं थोड़ी अंदाज से समझ लेना सब, कि ये जो मूल तत्व ज्ञान है पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा बताया हुआ, इसकी भी प्रशंसा करने वाले ऐसे सैकड़ों विद्वान थे जो बहुत सच्चे दिल से प्रशंसा करते थे, लेकिन वो अपनी जो वो परंपरा पुरानी बात थी वो ऐसे नहीं कि हम गुरुदेव के ऐसे अनुयायी बन के आ गए हूं, सर्टिफिकेट देने तो आते थे क्या सही कहते हैं, लेकिन वो ऐसा जैसे अपन लोग आत्मार्थी बन के बैठे और हमारा जो सचमुच अनंत काल का ज्ञान खत्म हो गया और यही सचमुच परम सत्य है और इसके बिना आत्मा का कल्याण नहीं है, ऐसा हमारे लोगों के से रोम रोम में व्याप्त है वो बात, ऐसे नहीं उन्हें व्याप्त हुई। जैन जैन समाज में भी ऐसे थे, अब मुमुक्षुओं में भी है, घबराना नहीं। मिट्टी के चूल्हे सब जगह हैं, अब तुम तो नहीं बिताए तो प्रकट कर रहे थे, अब अभी नहीं समझो तो कब समझोगे, अभी नहीं समझो हमने इतनी डांटी बाजी लगा दी क्यों और नहीं समझो तुम, सचमुच उनका दर्द सच्चा है, क्योंकि हमारे मोक्षु भाई महासत्ता से बिल्कुल अपरिचित हैं, है ना। जो मैंने संग्रह में लिखा ना उसमें नए चक्र में उस वक्त ये सब बातें लिखी और ये भी लिखी, बस अवान्तर सत्ता पे जमे हुए हैं सब है? महासत्ता का क्या स्वरूप है, उसकी क्या उपयोगिता है, देखो गुरुदेव जी उसके भगत थे, सत्ता स्वरूप एक किताब है जिन कीर्तन जी की है, तो गुरुदेव ने सब प्रसन्न किए, तो महासत्ता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। फिर अवान्तर सत्ता तो मुख्य है ही है? लेकिन महासत्ता माने हम तुमसे अत्यंत पृथक हैं, इसमें रंज मात्र भी शक नहीं है, लेकिन हम एक चीज ऐसी है कि जिससे हम तुमसे जुड़े भी हैं, क्यों, और उसका नाम है महासत्ता। हम दृढ़ हैं ना, तो द्रव्य का लक्षण जो अस्तित्व है वही तो महासत्ता है, तो महासत्ता हमारा है कि नहीं, हम जीव हैं वो जो तो हमें चेतना है वो महासत्ता का है, वो तो हमारी अभ्यंतर सत्ता है, लेकिन महास जो अस्तित्व है ना हमारा भावा है वो तो महासत्ता है, तो हिंदू हिंदू है, मुसलमान मुसलमान है, जैनी जैनी है, अजैनी अजैनी, ये सब परम सत्य है, लेकिन इनमें एक और सत्य है, अभी सबसे बड़ा नहीं कहना चाहता हूं मैं, एक सत्य तो और है कि जी जितने भी जो 125 अरब 125 करोड़ लोग हैं उनमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सब हैं, ये और हम सब भारतवासी हैं, एक ये भी बहुत बड़ा सत्य है कि नहीं, बोलो और इस सत्य से आपको स्वीकृत है, कोई आदमी गैर भारतीय जरा भारत के संबंध में दो बातें कह के तो बोले, हम चाहे कितनी गालियां दें अपने को, कोई देखे देखे तो हम बताएं उसे, फिर क्या समझ रहे ना, हम तो लोग ना देते ही हैं, उनने कहा सब अमेरिका में जाओ तो हर एक फल्लांग पर एक लेटरिन बाथरूम मिलेगा, जहां आपको पेशाब लगे आप पैरों को देखोगे तो वहां बाथरूम मिल जाएगा, आराम से जाके शांति से आप पेशाब कर सकते हैं। अच्छा तो हमारे देश में तुम्हारे यहां तो एक एक फल्लांग पर एक बाथरूम है, हमारा देश तो पूरा का पूरा देश बाथरूम है, जाओ पेशाब करो, कौन रोकता है तुम्हारे लिए, जंगल का गाड़ी खड़ी करो घुट लो कहीं तरह से, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम भारतवासी हैं, एक जुड़ान है ना हमारा, ऐसा ही ये महासत्ता का जुड़ान भी हमारा है, और उसका ज्ञान भी वास्तव में बहुत आवश्यक है। और जो मोक्षों में नहीं है तो उसको तो बिल्कुल परफेक्ट, सबसे परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, हम कब कहते हैं परफेक्ट तो है ही, दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ये बात भी 100% पक्की और नक्की है, लेकिन वो हैं और हम हैं, ये दोनों हैं, ये रिश्तेदारी है हमारी तुमसे। कौन सी क्या है, कौन सी रिश्तेदारी है, कि तुम भी हो और हम भी हैं, ये अस्तित्व, ऐसी एक महासत्ता है, उसकी बात को समझना चाहिए ना। अभी अपने क्या बात इसमें चल रही है, गुण दूध मिलाएं तो भी ऐसे ही अज्ञानी वो नौ अंग और ग्यारह अंग और नौ पूर्व पढ़ करके भी ये पर में से एक अर्थ नहीं छोड़ता, और बहुत बढ़िया समझाए पढ़ाए सुंदर करे एकदम है? बस अंत में इतना कह दे, इत अभिप्रायो समंत भद्राणाम, बस खत्म। ऐसा अभिप्राय समंत भद्र का है, ऐसा अभिप्राय कुंद कुंद का है, तेरा क्या है? जैसे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लोग होते हैं, वो तो कहते हैं हम बताएंगे, कुंद कुंद ये कहते, फलाना ये कहते, फलाना ये कहते, फलाना ये कहते, कि तुम क्या कहते हो, हम ये कहते हैं ना, कुंद कुंद ये कहते ये कहते, पहले उसमें उन पर कोई असर नहीं है। एक तो बात ये कह रहे, दूसरी बात ये कहते हैं ज्ञानी जी, ये शब्द पढ़ा है इसमें बहुत मार में, कि वो कौन सा ज्ञान होने पर लिखा है इसमें, शुद्धात्म ज्ञान के सद्भाव के कारण निरस्त हो गए हैं समस्त भेद, जिसमें कारण ऐसे उस भाव शुद्ध ज्ञान के सद्भाव के कारण ज्ञानी जन ज्ञान हो गए हैं, और वो भले ही विकल्प आते रहे उन्हें पर की करने के, कितने ही विकल्प आते रहे तो भी वो उसके अकर्ता और अभोक्ता हैं। अब एक कहते हैं कैसा हम कब होंगे, कि जब तुम ऐसा प्रणमन करोगे जैसे ज्ञानी जन का था, तुम हो जाओगे, बस खत्म। दो साल में पांच साल में हम काल क्या बताएं, वे कहते हैं ज्ञानी जन ऐसा प्रणमन करते हैं तो तुम भी ऐसा प्रणमन करोगे तो तुम अकर्ता और अभोक्ता हो जाओगे। क्या कह रहे, देखो वो भोग रहा है, रोजिना शादियां कर रहा है, क्षण में हजार लड़ाई लड़ रहा है, अच्छे बगी विभूति का मालिक है, और वो अकर्ता अभोक्ता हो गया। तो श्रद्धा और ज्ञान और क्रिया में भी तीनों एक साथ पैदा होते हैं, समझने समय ज्ञान समाचार पर। तो उसने ज्ञान ने स्वीकार किया, श्रद्धा में स्वीकृति आई, और चारित्र में भी प्रणमन हुआ। नहीं हुआ होता प्रणमन तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जाता कैसे। और इतना समझ लो कि अनंतानुबंधी में भी शुभलेलेसा होती है क्या, और संतुलन में भी बहुत बड़ी लेस्या हो सकती है। वो आगम के हमसाल लगाना मैं इसलिए भी बोलना चाहता हूं, कुछ कहां तक हो सकती है, पर बहुत तीव्र कसाय ऐसी दिख सकती है बाहर से, एक ऐसा हो सकता है कि मैंने सूर्पनखा की नाक काट ली, कोई बात नहीं, कोई बात ठीक नहीं, कहीं बहुत अब गड़बड़ होगा तो निपट लेंगे, बैठे शांति से बैठे, एक मिनट में इतने बड़े अपराध को भी माफ कर सकते हैं रामचंद्र जैसे लोग, आप समझिए ना, एक तरफ इतने बड़े अपराध को माफ कर सकते हैं, अब समझना, और दूसरी तरफ अकंपनाचारी कह सकते जाओ तुम वहीं खड़े रहना, तुम्हारे पीछे सारा संघ क्यों मरे, जो कुछ भी होगा तुम भोगना। यद्यपि ये बात मुझे अंदर से चित्त से स्वीकार नहीं है, इसलिए मैंने इसको बहुत हल्का कर करके एक कहानी लिखी है, लेकिन अभी ये बात समझाने के लिए तो उदाहरण काम का है ही ना कि उनने आदेश दिया ही ना, जबकि वो स्पष्ट जानते थे कि मौत का संकट है और वे तीन कसाय के अभाव वाले थे, तो ये काम काय कौन सी कसाय का था बताओ मुझे, संतुलन का था बोलो, क्या बताएं लेशा का और लेशा में और कसाय में अंतर नहीं समझो तो हम करें क्या, कैसे डिसीजन हो, तुम तो एक मिनट में किसी को बहुत क्रोधी घोषित कर देते हो, एक मिनट में एकदम शांत स्वभाव घोषित करते हो, क्या हमारी शांति की तो शांति की मूर्ति है, अरे जितनी तुमने है उतनी उनमें है, ऐसा नहीं, ये तो बाहर थोड़ा बहुत है, इससे कुछ जो तुम्हें दिखाई देता है बाहर से कुछ नहीं है प्रदीप जी, वो तो कसाय शक्ति कितनी है ना, ये सब उस पर निर्भर करता है, और ये जो कार्य दिखते हैं ये तो मैंने बोला संजन में भी ऐसा हो सकता है, अपने बाल बच्चों को तो छोड़ जाए भूखो मर रहे होंगे कौन अकंपनाचारी, अब 700 मुनिराजों के संग की इतनी चिंता होगी, ये भी कह सकते थे बैठो भैया तुम शांति से अब मिलजुल कर भोगेंगे, जो बच्चों का जो संकट आएगा वो मिलजुल कर भोगेंगे, हो सकता है मेरा मतलब कहने का, तो इसलिए कहते हैं कि असली चीज तो ये है कि द्रव शुद्ध भाव शुद्ध में जो तत्व ज्ञान की बात कही है वो हमें स्वीकृत होना चाहिए, जब हमको ये डर लगता है स्वीकृत होना चाहिए उसका मतलब हम आज से वो काम बंद होना चाहिए, अभी नहीं बहुत बहुत छूट है, उसमें 14वें गुणस्थान से वो अन्ना जी बता रहे थे ना रात को कि वो 14वें गुणस्थान तक भी वो असंयम का भाव रहता है, असिद्धत्व नाम का वो रहता है केवल भगवान को भी अभी पूरा परम से हो जाता तो केवल मोक्ष हो जाता कि नहीं हो जाता, तो यहां शुरू यहां से हो जाता है और वो वहां तक रहता है, सम्मत दर्शन यहीं पूरा हो जाता है और सम्यक ज्ञान 13वें गुणस्थान में पूरा होता है, हमको इकट्ठा सब पूरा ही करना, हमको पूरे गुणस्थान ही में बीच के जाहिर करना है, सीधा सच्चा अर्थ ये है कि आपको 14 से लेकर 14वें गुणस्थान तक का स्वरूप भी आपके ख्याल में नहीं है, अन्यथा ऐसी बात कैसे करते, क्या वो भी जरूरी है कि नहीं, देखो ये हो गया पूरा जो मैं कहना चाहता था, अभी कलश पढ़ो बहुत अच्छा है, बसंत तिलका है, बसंत तिलका तो बहुत बढ़िया छंद है, कह दिया हाँ बोलो हिंदी भी बोलो भी मुक्त है, देखो उसने 14वें गुणस्थान में ही मुक्त बता दिया उसे, वो मुक्त ही है, अब भी तुम्हें मोक्ष अब भी एक सेकंड में मिलता है, जैसे अपन ने किसी मकान का वो दे दिया एडवांस और लिखा पढ़ी करा ली, पक्की खरीदी थी, वो लिखा पढ़ी भी ऐसी पक्की होती है कि वो बदलना चाहे तो बदल नहीं सकता किसी कीमत पर, उसने यदि एडवांस हमने कहा 1000 रुपये दिया हो और 1 करोड़ का मकान खरीदा हो, लेकिन यदि उसने लिखा पढ़ी पक्की कर ली स्टाम्प पर तो फिर वो कभी बदल नहीं सकता, सृष्टि तो अदालत में जब होगी जब हम 1 करोड़ देंगे तब, ये बात अलग है, उसमें लिख देते हैं तो 3 महीने के अंदर सृष्टि करा लेंगे, और फिर वो नहीं कराए और फिर वो शर्तें लिख देते पूरी नहीं करे, लेकिन वो पक्की होती बात, तो ऐसी बात क्या कहते पक्की है, तुमने श्रद्धा में ये नक्की कर लिया कि मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, ज्ञाता दृष्टा हूं, तो तुम मुक्त ही हो गए, वो कहते तुम कहते ये मकान अपना है, एक करोड़ का मकान तुम्हारा है, ये सारा जगत मानने को तैयार है कि नहीं बताओगे? एग्रीमेंट हो गया है। अरे सारा जगत तो कैसे नहीं मानेगा, वो मजिस्ट्रेट भी मानने को बाध्य है, ये एग्रीमेंट है। ये समझ समझना कि अभी तो हुआ थोड़ी है, अभी तो इतनी कसर बाकी है, इतनी कसर बाकी है, कुछ नहीं है। वो पंचम काल है, इसमें छाये समर्थन तो होते ही नहीं है, वो छह सुन तो छूट जाता है। अरे क्यों रोना रोते हो? वो बहन श्री ऐसा कहती थी, वो जोड़ नू छाया। तो गुरुदेव ऐसा कहते थे रतन में कि वो बहन श्री के ज्ञान में वो जोड़ नू छाया आया है, लेकिन आगम में नहीं मिलता, इसलिए मैं कहता नहीं, ऐसा कह के कहते थे। आपने भी सुना होगा कई जगह कि एक जोड़नू छायक होता है। मैंने एक गुरुदेव से कहा कि साहब मेरे पास आगम प्रमाण है उसका। मैं इतने अंदर से उत्साहित हुए, क्या बताओ 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 क्या कहा क्या है? स्पष्ट है कि ये आवक दावक होती है ना अपनी काय में, ये जो 34 थाना 24 थाना तो क्या जाना, तो मोक्ष हुआ कभी बड़ा ही पढ़ा ही नहीं, वो क्या होता है, कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान में जीव जा सकता है और तो कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान में आ सकता है, हैं? तो जैसे क्षयोपम समय दृष्टि जीव, यदि उसका क्षयोपम नष्ट हो तो उसमें क्या क्या अवस्थाएं हो सकती हैं, है ना, इरादे तो मिथ्यात्व हो सकता है, एक एक तीसरा गुणस्थान हो सकता है, एक दूसरा गुणस्थान हो सकता है, आता कि नहीं आता, ऐसा हो सकता है, फिर पांचवा गुणस्थान हो सकता है आता कि वो सयोपम समय दृष्टि से फिर उपसम समय दृष्टि हो सकता है, द्वितीय उपसम होगा ना शनि में चला जाए तो उपसम में के, फिर कहते हैं वो छायक समय दर्शन हो सकता है, तो सयोपम से सीधा छायक समय दर्शन हो सकता है ना, ये अपने है कि नहीं है आबक जाबक में, अटल जी पढ़ी या नहीं पढ़ी, तो वही तो हो गया। अब उसको हम क्या कहेंगे, जोड़ दू छाया, जो क्षयोपम समय दृष्टियों को क्षयोपम समय दर्शन से छायक समय दर्शन होना नक्की है, केवल के आनंद झलक ही गया है ना, तो हम उससे कहेंगे कि इसका क्षयोपम ज्ञान क्षयोपम समय दर्शन जोड़नू छायक है। प्रमाण बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, बात तो सच्ची है, इसमें क्या है, ये सीधा सत्ता थोड़ी लिखाने लगा। जब वो क्षयोपम सम्मा दर्शन से छायक सम्मा दर्शन हो सकता है तो फिर कहां शंका रह जाती है, अब उसी सम्मा दर्शन को हम जोड़ दू छायक कहेंगे। अरे किसको है जोड़ दू छायक, किसको नहीं है, अरे ये बहुत लंबी बातें हैं कि किसको किसको के चक्कर में मत पड़ो, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। किसको से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें होगा तो तुम्हारा कल्याण होगा क्या, और तुम्हें नहीं होगा तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, हमें होगा तो हमारा कल्याण होगा, समझ नहीं ना कि नहीं, नहीं वो कल्याण वल्याण तो ठीक है, लेकिन वो जगत में भी तो थोड़ा सा प्रतिष्ठा में भी, क्या बात करता है तुम, किस चीज से है ना, मैंने कोहिनूर हीरा से बाजार से वो लहसुन खरीदना चाहता है, 60 रुपए किलो हो गया ना, ऐसा हो क्या बात कर, क्या यानी कहां तो वो सम्यक दर्शन, और उससे हमें लोक में थोड़ी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, इसकी चाह बोलो प्रदीप जी, ये कितनी मतलब तुच्छ बात है, वो प्रतिष्ठा की क्या कीमत है, जो सम्मा दर्शन का फल है जिसे सह मुक्ति एव है, जिसको वो कह रहे हैं वो तो मुक्त ही है, क्यों तुम्हें वे सिद्ध बता रहे, अब तुझे समय भी नहीं बनना। कितने लोग मानेंगे थे? अभी कोई कहे मैं घोषणा करूं कि मैं समयदृष्टि हूं तो इतने बैठे ना मेरे इतने भगत श्रोता, इनमें से 99% किनारा कट जाएंगे, 1% कुछ आएंगे स्थूल बुद्धि लोग, कहां समझ में बहुत अच्छा समय देते मुझे। सबके साथ ऐसे ही होता है लगभग, क्यों ये हजारों काटना हो तो बोलना बेटा, शांति से तेरे को सुन रहे हैं ना, तेरे ज्ञान से तेरी प्रतिष्ठा है उसमें तेरे को संतोष नहीं है, क्यों? लेकिन बिना ज्ञान के प्रतिष्ठा पाना चाहता है, ये मतलब है, ये है उसका अर्थ। तो क्या करे, क्या करे, छिपा तो छिपा भी, चोरी कर ले तो छिपा, सहज भाव से रह, जो दाने डाल ले, नहीं दाने नहीं डाल ले, हमारे अंदर उससे प्रतिष्ठा लेकर और जन्मा कर कुछ करने की भावना रंच मात्र भी नहीं होनी चाहिए। बाकी जब हम ना कोई कोई छिपाने की बात है और ना कोई यही व्यक्त करने की बात है। अरे वही जादू कहते ना कि वो जादू तो बोले तो सिर पर चढ़ करके बोले, यदि तेरी परिणति शुद्ध होगी, आगे परिणति की शुद्धता से ही तो जानेगा ना, नहीं तो नहीं जानेगा ना, मेरे कहने का मतलब ये है। तो उसको तू अपनी लौकिक प्रतिष्ठा का साधन मत बना, जिसकी कीमत मोक्ष है। कीमत तो जब मिलेगी तब मिलेगी। आचार्य तेरे को आज ही मुक्त मानने को तैयार हैं, घोषित करने को तैयार हैं। अब तुम क्यों, कुछ कुछ ने तो बहुत स्पष्ट कह दिया, जो निधि पाकर निज बतन में भोगते, जो ज्ञान निधि पा ज्ञानी जन भी गुप्त रहकर भोगते, गुप्त रहकर भोगना चाहिए नहीं लिखा, क्या लिखा उत्तम जी भोगते, क्या अर्थ है उसका कि ज्ञानी जन तो गुप्त रहकर ही भोगते हैं, ज्ञानी जन उसको प्रकट करने की कोशिश नहीं करते हैं। ज्ञानियों को गुप्त रह के भोगना चाहिए, ये चाहिए माइये की भाषा नहीं है, वो तो ज्ञानियों का उनने स्वरूप बताया है, तुझे क्यों, कौन मानता है कौन नहीं मानता है, क्या फर्क पड़ता है तेरे मन, तेरे इन लोगों के सर्टिफिकेट से तुझे मुक्ति का रास्ता खुलेगा? यदि तुझे है तो इनके सर्टिफिकेटों की क्या जरूरत है, और नहीं है इनके सर्टिफिकेट वगैरह से क्या होगा, कितने इकट्ठे करके ले जा, कुछ गेट पे कोई चपरासी अंदर घुसने देगा? ये वस्तु का स्वरूप है। अब ये गाथाएं आ गई 19-20। अब जब भी जहां का महाभाग्य होगा तो ये 19वीं 20वीं गाथा वो सुनेगा, और उसके बाद में वो है कौन इसी गाथी जो बड़ी चीका वो मार्मिक, अब देखो कहाँ कैसा अवसर आता है। यदि मेरी तबीयत जरा ठीक होती तो मैं तो चालू नहीं रखता, बंद ही नहीं करता, जितने दिन तक चालू रखता रहता चलता तो चलती गाड़ी, लेकिन अब तुम्हें कल से अब बंद कर।